19 मई 2005 की वाणी चंदन की, 14 जुलाई 1966 की, दूसरा पेज के अंत में बात कर रही थी, कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो आवेंगे ना जरूर, झूठा तो नहीं बुलाते हैं, ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के तन में आवेंगे, वाणी चलावेंगे और वापस चले जावेंगे, पतितों से पावन कोई बना नहीं, तो भक्ति मार्ग में इतना बुलाना करना बेकार हो जाता है, इन बातों को समझते नहीं है, बुद्धि का दीवाना बिल्कुल निकला हुआ है, अपन को सब पतित समझते भी है और कहते भी है, क्योंकि पुरानी दुनिया को तो जरूर पतित ही कहेंगे, नई दुनिया है पावन, 14/7/66 की वाणी का तीसरा थी, मनुष्य तो चित्त दे करके मुझ जाते हैं, परंतु इन चित्रों के बगैर तो काम चल भी नहीं सकता, इन चित्रों में सारा नॉलेज है, अभी तुम बच्चे जानते हो, कहते भी हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां 10 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचारी भारत को शिष्टाचारी बिना करके दिखा देंगे, कब की बात है, सांसद में वाणी बोली गई है जुलाई में, और बोलने वाला भी कौन है, हैं? कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई देवता नहीं है, कोई महात्मा नहीं बोल रहा है, धर्म पिता नहीं बोल रहा है, दुनिया भी मनुष्य गुरु नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है, स्वयं भगवान बोल रहा है कि 10 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचारी भारत को शिष्टाचारी बना देंगे, कौन से सन में, 66 जुलाई में, तो 10 वर्ष ऐड किए गए तो 76 आया ना, फिर भ्रष्टाचारी भारत शिष्टाचारी बन गया क्या, है? हाँ
नंबर वन शुरू हुआ, सवाल
शुरू हुआ एड़ी से कि चोटी से,
चोटी से
न एड़ी से न चोटी से, अच्छा भारत बोला है तो जरूर किसी चैतन्य व्यक्ति के लिए बोला, क्योंकि पतित बनना और पावन बनना ये आत्मा की बात है, जड़ प्रकृति पहले पावन नहीं बनती है न पतित बनती है, चैतन्य मनुष्य आत्मा पतित भी बनती है और पावन भी बनती है, और यहाँ बोला गया है भारत के लिए, तो भारत कोई जड़ जमीन का नाम भारत नहीं होता है, कहते हैं भारत माता की जय, तो माता कोई विधवा है क्या, विधवा माताओं की तो भारत में मान्यता नहीं है, पूजन नहीं है, सगवा माताओं की पूजनीय है, बात हो सकती है, और माता है तो जरूर साथ में पिताजी है। तो भारत 10 वर्ष में शिष्टाचारी बन जाएगा। चलो चैतन्य ही सही तो क्या शारीरिक रूप से बन जाएगा? नहीं, हर काम की शुरुआत सूक्ष्म से होती है। पहले सूक्ष्म में परिवर्तन होता है, फिर स्थूल में होता है। तो पति तो पहले पुत्री बनती है, पावन भी पहले पुत्री बनती है। बुद्धि का परिवर्तन बड़ा परिवर्तन, इसलिए कहते हैं बुद्धि से सरेंडर हुआ माना पूरा ही सरेंडर हुआ। तन से सरेंडर हो गया, धन से सरेंडर हो गया, समय संपर्क और संबंधियों से भी सरेंडर हो गया, लेकिन बुद्धि अपने तरीके से चलाता रहा तो सरेंडर होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बुद्धि का परिवर्तन बड़ा परिवर्तन माना जाता है। तो सन 76 में भारत माता को हो, भारत पिता को हो, जरूर कोई सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई जोड़ा है, जिसके लिए पहले भी वाणी में बोला था। क्या बोला था? लक्ष्मी नारायण के लिए कुछ बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। पूरी का चक्कर अगर घूमे, चलो 10 वर्ष न भी कम करे, पूरा ही उल्टा चक्कर घुमाए तो कौन सा सन आता है? 66 आएगा ना, और उसमें से 10 वर्ष कम कर दें तो क्या आएगा? 76 आएगा ना। तो वाणी के हिसाब से लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 1976 माना 76 है मैं कोई न कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जोड़े के रूप में, तो साथ साथ है बहुत भी रूप से नित्यात्मक बुद्धि बन जाती है। निश्चय बुद्धि विजय थी, और जब पक्का निश्चय बैठ जाता है तो आत्मा कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाती है। तो संक्षेप में जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए ये वाक्य बोला गया है। कोई जड़ जमीन भारत के लिए नहीं बोला गया है। तो बोला किन चित्रों में सहारी न लीजिए। 10 वर्ष की घोषणा कौन कौन से चित्रों में दी हुई है? बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए थे और बुद्धियोग से जो सीढ़ी का चित्र बनवाया था, उन दो चित्रों में था। एक सीढ़ी के चित्र में नीचे की ओर और दूसरा लक्ष्मी नारायण के चित्र में घोषणा में नीचे की ओर 10 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। वो चित्र 66 में बनकर के तैयार हुए थे। उन चित्रों के लिए बोला है इनमें दुनिया की सारी नॉलेज है। अभी तुम बच्चे घोषणा कर रहे हो, हम ब्रह्मा कुमारी यहाँ 10 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचारी भारत को शिष्टाचारी बना करके दिखाएंगे। तो स्थूल रूप से देखने की कोई बात नहीं थी, ये निश्चयात्मक बुद्धि की बात थी। बुद्धि का परिवर्तन हुआ, बोला ब्रह्मा कुमारी है तो जरूर ब्रह्मा भी चाहिए। कब? 66 की बात है ना? और भ्रष्टाचारी भारत को शेष्टाचारी बनाने की बात है, 77 की। तो पहले तो स्थापना का कार्य होगा ना। अगर बुद्धि रूपी क्षेत्र में ये स्थापना का कार्य नित्यात्मक बुद्धि से पक्का हो जाता है तो 77 में ब्रह्मा चाहिए या नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। बच्चों की बुद्धि इन बातों में बहुत चलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। नहीं, जो यदि के आदि में आदि ब्रह्मा था, जिस ब्रह्मा के मुख से सुन करके प्रजापिता का जन्म होता है, किंतु मुरली में बोला है ब्रह्मा बने बिगर प्रजापिता होगा क्या? पहले तो ब्रह्मा की औलाद तो पहला ब्राह्मण चाहिए। जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय तो पहला वैश्य, और जो पहला वैश्य तो पहला शूद्र, और जो पहला शूद्र बनता है वो ही पहला ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण कब बनता है? जब ब्रह्मा के मुख से जन्म ले। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चाहिए, मुख वंशावली भी नहीं तो जरूर प्रजापिता तो सारी सृष्टि का बीज है, पिता माना बीज है। अब आदि ब्रह्मा से प्रजापिता का जन्म हुआ, प्रजापिता स्वयं भी ब्रह्म है, ब्रह्मा भी चाहिए और प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। इन्हीं के द्वारा शक्ति की स्थापना का कार्य पूरा होने का। में आज ब्रह्मा जरूर 60 साल का होगा और उस 60 साल में 40 वर्ष और ऐड किए जाए तो 100 साल पूरा होता है। 77 में वो आज ब्रह्मा 100 वर्ष की एज में खत्म हो जाता है, मृत्यु लोक में ब्रह्मा खत्म होता है। ब्रह्मा की आया मृत्यु लोक में खत्म होगी तो आत्मा तो आजार हमारा भी आती है, वो कहां प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? मृत्यु लोक में जन्म लेगी या अमर लोक में अनुभव करेगी? अमर लोक में अनुभव करनी चाहिए। ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास होता है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद 100 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद निश्चयात्मक बुद्धि के आधार पर संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए बोला इन बातों में बच्चों की बुद्धि बहुत चलनी चाहिए और विशाल बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तक हमें दादा ने कराए ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा खराब हो गया। बड़े चित्र बनाने में कोई जास्ति खर्चा नहीं होता है। बड़े चित्र बनाने चाहिए ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। बाबा ने बच्चों को कितना समझाया कि इन चार चित्रों को छत इतना ऊंचा बनाओ। बड़े बड़े चित्र मुख्य मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे एरोड्रोम है कि भाई आज की चीज लेकर के बनाओ। बाबा राय देते ऐसे ऐसे करो। अब एरोड्रोम वाले क्या लेंगे, उनको समझाने से कम दाम पर भी चल सकता है। दाम कम कर देंगे क्योंकि ये तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से मनुष्य बाप से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन सकता है। लेकिन मुख्य है पहली शहर को पकड़ना। क्या जो बड़े बड़े चीज है पहले किसकी बुद्धि में छपना चाहिए, कलकत्ता की बुद्धि में छपे या बंबई की बुद्धि में छपे। पहले तो दहली को पकड़ना चाहिए। दहली को जीत लिया तो सारी दुनिया जीत ली। क्या एक के पति तो बनने से सारी दुनिया प्रसिद्ध बन जाती है और एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन हो जाती है। इसलिए अमित वाणी में बोला था दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। और दिल्ली है सारे जगत की जननी। क्यों? भारत को भी माता पिता का देश कहा जाता है क्योंकि जितने भी धर्म हुए हैं उनकी शुरुआत कहां से हुई है। पहले पहले दुनिया में जो भी धर्म था वो कहां था और दुनिया की अनेक धर्मों की जनरेशन कहां से फैली? भारतीय तो था प्राचीन देश, दूसरे देश तो थे ही नहीं। और भारत में भी दिल्ली मुख्य है। दिल्ली ऐसी राजधानी है विश्व की जहां सात धर्म वालों ने राज्य किया है। दिल्ली ऐसी माता है जो सबको अपनी गोद में जगह देती है। तो बोला है माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। सारे विश्व की जगत जननी है, विनाश के टाइम के लिए बोला है कि दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनेगी और दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनेगी। दिल्ली कब्रिस्तान सो दिल्ली कब्रिस्तान। अब दिल्ली कहो जगत जननी कहो गीता माता कहो, क्योंकि गीता माता है सात धर्मों का माई बाप। सबसे जास्ती दुर्गति किसकी होती है? भाइयों की दुर्गति होती है इस दुनिया में। यह मानवों की दुर्गति सबसे जानती होती है। कुमारों की सबसे जानती दुर्गति होती है या कुमारियों की होती है? माता की। और गीता के लिए बोला हुआ है, गीता माता सारी ही खंडन की हुई है। तो दुनिया का उत्थान का आदि स्थान है, उसी का पूरा खंडन हो जाए तो दुनिया का मंडन कैसे हो सकता है? माताओं में सबसे बड़ी माता कौन?
जगदम्बा।
इसकी गोद में हर धर्म ने राशि किया है। अगर वो कब्रिस्तान बन जाए तो कब्रिस्तान में कौन होते हैं? उनका नाम क्या दिया? कब्रिस्तान की मिट्टी में जो गाड़े जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुर्दा। और गीता सारी की सारी खंडन की हुई है। गीता है माता, वो कागज की गीता है या चैतन्य गीता है? चैतन्य गीता है। और वो सारी की सारी खंडन की हुई है। तो भारतवासियों को इस बात पर फख्र होना चाहिए या डूब मरना चाहिए? ये बात सुनकर क्या होना चाहिए है? इस बात पर बुद्धि नहीं करनी चाहिए? इस बात पर बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कैसे बच्चों की बुद्धि चलती ही नहीं? बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। घर किसको कहा जाता है? ईंटों की चौहद्दी को घर कहा जाता है या गृहिणी को घर कहा जाता है? शास्त्र में तो लिख दिया है ना, ग्रहम ग्रहम में उच्यते गृहिणी ग्रहम उच्यते। और गृहिणी में भी घर को संभालने वाली दो माताएं होती हैं, एक होती है छोटी मम्मी और एक होती है बड़ी मम्मी। ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? बड़ी माँ के ऊपर ज्यादा मदार होता है, कम से कम शुरुआत में। तो जिस घर की बड़ी माँ का ही सारा खंडन हुआ पड़ा हो, बड़ी माँ ही खंडन कर दी गई हो, रामायण में जगत जननी सीता के लिए क्या कहा गया है? सीता के ऊपर किसका आधिपत्य हो गया? रावण का आधिपत्य हो गया। रावण जंगलों में कांटों के जंगलों में चक्कर काटते हैं, तो अयोध्या का उद्धार हो जाएगा। जब गीता सारी की सारी खंडन की हुई है रावण संप्रदाय के द्वारा, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया, बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया गया, बाप को नेस्तनाबूद कर दिया और मृदुल स्वभाव के बच्चे को गीता पति भगवान बना दिया। बेसिक नॉलेज वालों ने ही बनाई दिया, दुनिया वालों ने बनाई दिया, यह एडवांस पार्टी वालों ने भी बनाई दिया। एडवांस पार्टी में भी 80 80% से भी ज्यादा 90% समझो, ऐसा ग्रुप है जो कृष्ण को ही पसंद करता है, मृदुल स्वभाव को पसंद करता है, बाप के स्वभाव संस्कार को पसंद नहीं करता। क्यों क्यों नहीं पसंद करता? अरे बीके में अम्मा ही अम्मा चिल्लाते हाथ देर क्यों होने लगे? अम्मा ही अम्मा के पीछे पड़ गए, बाप को यहां तक बुला दिया कि अपना टाइटल भी भूल गए। क्या कहते लगा ब्रह्मा कुमारों का? ठीक है ब्रह्मा कुमार प्रजापिता क्यों भूल गया? जो बाबा को हाथ मुड़ी में याद दिलाना पड़ा कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी शब्द से पहले प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए। और ध्यान से जो चित्र बनाए गए लक्ष्मी नगर के चित्र, उनमें खास प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। पहले प्रजापिता शब्द ऐड नहीं किया जाता था क्योंकि मां बाप के बगैर असहाय हो जाती। ये भी आज यही प्रजापिता चला गया, बाद में टाइटल ब्रह्मा बाबा को मिला। आखिरी टकराते टकराते मां का हाथ फेल हो गया। तो बेसिक नॉलेज की बात नहीं, एडवांस नॉलेज में थी। अम्मा ही अम्मा बुद्धि में आती है, बाप हो जाता है। कन्यासी क्या करते हैं? जब याद में बैठते हैं माला लेकर के तो क्या करते हैं? हैं? भूल गया, गौ मुख में हाथ डाल करके माला से मिलन करते हैं। इसके मुख में हाथ डाल करके गौ के मुख में, ये गौ का मुख कौन सा है? माला सिमरण करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, इसमें गौ के मुख में हाथ डालने की क्या दरकार? दरकार है? नहीं। फिर क्या करते हैं? गौ के मुख में ही उनकी बुद्धि चली जाती है। बैल बाप क्यों भूल जाता है? भूलना तो नहीं चाहिए, मुरली में तो यही कहा है माँ को याद नहीं कर रहा है, किसको याद कर रहा है? बाप को याद करना है, माँ को रिगार्ड देना है, लेकिन याद बाप को करना है। अगर माँ का ही चित्त बुद्धि में घूमता रहे, जैसे कि तथा का चित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा का चित्र छपाने लगे, बाप को बिल्कुल उड़ाई दिया। तो जिस घर का सरपरस्त उड़ाई दिया जाएगा, मां को असहाय हो जाती है। मां रावण के चुंगल में आ गई, वो टाइटल धारी मां दादा लेख राय ब्रह्मा वो भी रावण के चुंगल में आ गया, आखिरी हार फेल कर दिया क्योंकि बाप तो मौजूद नहीं था साकार में। अब यहां हार्ट फेल होने की बात नहीं है, क्यों क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यहां तो पहले से ही पता है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये निश्चयात्मक बुद्धि से संक्षेत्र में फाउंडेशन पड़ चुका है, जिसके आधार पर अमर कथा बनती है, अगर कथा माना किसकी कथा, ऐसे की कथा जो मरने वाला नहीं है, नित्य बुद्धि माना जीवित है, अनित्य बुद्धि माना मृत्यु को पाया हुआ। तो गीता माता सारी की सारी ही खंडन की हुई है, इस बात में बुद्धि नहीं चलती। ये ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, काहे के लिए, घर बनाने में माँ का भी विशेष हाथ है, इसलिए बोला हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना। वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत कहाँ से होगी? कोई छोटी इकाई शुरू होगी या कोई बड़ा संगठन करके छोड़ देगा? जरूर कोई छोटी इकाई शुरू होनी चाहिए, पहले माता पिता चाहिए, और पिता पहले प्रत्यक्ष नहीं होता, पहले कौन चाहिए? माता चाहिए। और माता रावण के पंजे में आ गई हो, जब किसी को अपने कंट्रोल में करना होता है, परमत पर या मनुष्य मत पर चलाना होता है, तो पहले उसकी बुद्धि को कंट्रोल किया जाता है। बुद्धि को ही अगर बरबला लिया जाए तो बाकी आत्मा के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा जरूर चाहिए, ब्रह्मा के बगैर स्थापना नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा में भी लोड़ा पड़ जाता है, एक रूप कहता है नहीं ये अम्मा है ये जगदम्बा है, दूसरा रूप कहता है नहीं ये अम्मा है ये जगदम्बा है। अच्छा सुनो, वो भी लेकिन बाप तो एक है, जब बाप एक है तो बाप जो स्वीकार करता है वही मान लेना चाहिए। बाप ने जिसको स्वीकार कर लिया, जिस रूप में स्वीकार कर लिया, वो मान लेना चाहिए। तो बच्चों के आपसी झगड़े में ब्रह्मा चार चार पांच पांच हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को अनेकों के नाम है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। अनेकों ब्रह्मा में भी आदि ब्रह्मा को पकड़ना पड़ेगा। जो आदि ब्रह्मा है उसका स्थान विशेष कौन सा है? क्योंकि व्यक्ति स्थान विशेष से जुड़ा हुआ होता है। नई सृष्टि की शुरुआत का स्थान कौन सा होगा?
दिल्ली।
तो वो धरणी इस स्थूल रूप में सारे जगत की जननी है और उसकी प्रतीकात्मक चैतन्य शक्ति भी दिल्ली ही है। इसलिए बाबा कहते हैं सारा उद्योग का मकान दिल्ली की सेवा में लगाना चाहिए, दिल्ली का घेराव डालना चाहिए, पहले दिल्ली के चारों ओर घेराव डाला जाए, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। पंचतंत्र में क्या हुआ? जनता पार्टी ने सीधा हमला दिल्ली के ऊपर कर दिया, सारा जोर दिल्ली के ऊपर लगाई दिया, दिल्ली को जीत लिया। ज्यादा सीटें जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत ली और बाहर से आ गए, तो गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी? नहीं चल सकती। अभी भी बाबा कहते हैं दिल्ली का घेराव डालो, दिल्ली का परिवर्तन हुआ तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। जगदम्बा के मंदिर में जाओ, पुजारियों की सेवा करो। अब कोई जड़ मंदिर तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो चैतन्य मंदिर है। तो बोला ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा की जरूर चाहिए। बस दादा ले रहे हैं टाइटल सारी, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया है। ब्रह्मा की रूप में जिसने विशेष पार्थ कह शक्ति का बजाया वो चोला अभी नहीं है, लेकिन आत्मा तो है। वो आत्मा कोई ऋतु प्रवेश करके पार्थ बजा रही है, वो ब्रह्मा जगदम्बा में ही प्रवेश करके पार्थ बजाता। न ब्रह्मा की बुद्धि में अभी तक बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कौन है, और न वो दादा लेखराज ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करके विशेष पार्ट बजाने वाला है उसकी बुद्धि में भी ये नहीं बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कौन है। प्रैक्टिकल में साधार स्वरूप कौन है? तो जब तक ये सेवा नहीं हुई है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। दिल्ली दूर है, बाबा जैसे बच्चों की सारी बुद्धि होनी चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाओ, खास देहरी को पकड़ो। देहरी को जीत लिया तो सारी दुनिया जीत ली।
दिल्ली और देहरी फर्क है क्या?
दिल का चित्र बनाते हैं विदेशी और देह कहते हैं शरीर को, और सारे विश्व का परिवर्तन जहां से होना है, घर का जहां से परिवर्तन होना है, उस दरवाजे पर जब हम मुख्य दरवाजे पर पांव रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
दहली।
जिसके बती है दहली। बात तो एक ही
कैसे दिल कहा जाता है जिसने दिल लिया, और देरी के बारे में बोला गया जिसने देर लिया। बोले क्या
अर्क फर्क है? किसी का दिल जीता जाता है तो शरीर भी जीता जा सकता है। दिल नहीं जीता गया तो शरीर नहीं जीता जा सकता। शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे दिल भी अपनी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि देह के अंदर ही दिल मौजूद है। दिल और दिमाग दो बातें। सुबह में जिस त्रिमूर्ति को लेकर के आता है उस त्रिमूर्ति में एक मूर्ति है मन कहो दिल कहो, और एक मूर्ति है बुद्धि। ऐसा अंतर होता है, दिल कुछ कहता है और बुद्धि कुछ कहती है। दिल कहता है रसगुल्ला खाए लेना चाहिए, और बुद्धि कहती है लीवर खराब है नहीं खाना चाहिए। दिल नहीं मानता तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। दिल्ली कैपिटल है, राजरानी है, यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है। तो जैसी राजधानी होगी वैसा ही सारा राज्य होगा। राजरानी दुरुस्त नहीं है तो राज्य भी दुरुस्त नहीं हो सकता। दिल्ली में सारा दिक्कत होते तो वहां चिन्ह पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो, 9x12 का सीट हो, और इससे भी बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा। कम से कम चित्र 6 बड़े इतने जरूर होने चाहिए। ये 6 15 या 14 फुट की होगी, तो जो भी बड़े चित्र हो, अक्षर भी बड़े बड़े हो, मुख्य चित्त है त्रिमूर्ति गोला सीढ़ी और ये सीढ़ी की तो कमाल है, इसमें विनाश आदि की बात की अच्छी तरह लिखी हुई है और पतित पावन परम पिता परमात्मा है। बाप से तुम बच्चों को बचकर लिखता है तो मुख्य है ये सीढ़ी का चित्र। प्रोमिनेंट जगह कौन सी है वो तुम बच्चे जानते हो, कौन सी जगह है प्रोमिनेंट जगह कौन सी है जहां ये चित्र छपाई दिया गया है?